ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम यहाँ उपस्थित है हरे कृष्ण सत्संग केंद्र में भृगु कक्ष में। और चूंकि भृगु कक्ष पवित्र नर्मदा नदी के ऊपर है, इसलिए ये सत्संग केंद्र के अलावा भृगु कक्ष में और आसपास में कहीं सत्संग केंद्र है न, और आध्यात्मिक संस्थान अलग अलग है। एक है वो एक गायत्री है न, वो हरिद्वार का गायत्री परिवार है, उससे अलग है, ऐसे अलग अलग संस्थान है। और भारत में बहुत 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 आध्यात्मिक संस्थान है, अलग अलग मत से आध्यात्मिक प्रचार करते हैं। तो इसको उनका क्या विशेषता है? हम बोलते जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्म परित्यज मामेकं शरणं व्रज। भगवान कृष्ण कहते हैं और सभी प्रकार के धर्म परित्याग करके केवल मेरे चरणों में आत्मसमर्पण करो। तो ये हमारा प्रचार है भगवद गीता के अनुसार कि ये एक ही पथ है। हम स्वीकार करते हैं जैसे गीता में भगवान कृष्ण कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग योग मार्ग स्वीकार करते हैं, परंतु भगवद गीता यदि हम यथारूप ग्रहण करते हैं और वास्तव में दूसरे रूप से ग्रहण नहीं करना चाहिए, अयथारूप से भगवद्गीता तो भगवद्गीता नहीं होती है। तो भगवद्गीता की वाणी यदि हम सचमुच ग्रहण करते हैं जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए, तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि कृष्ण भक्ति मार्ग सर्वोत्तम है और सब जीव के लिए एक ही परम कल्याण का मार्ग है। अन्य वचनों में हम स्वीकार नहीं करते जतो मत ततो पथ। जतो मत ततो पथ बंगाली है, बंगाली शब्दों है, जिसका अर्थ है कि जितने भी मत है इतने भी पथ है। तो एक दृष्टिकोण से वो सही है, बहुत पथ है, लेकिन सब पथ तो एक ही गति पर नहीं जाते। कुछ पथ नरक है और जाते, कुछ पथ मृत्यु संसार में जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम क्रोध और लोभ के द्वारा नरक जाना है, इसलिए यही तीन पथ परित्याज्य है। तो सब पथ जिसमें काम क्रोध और लोभ का पोषण होते है, यही सब पथ नरक की ओर जाता है। और सभी पथ जिसमें पूरी श्रद्धा नहीं है भगवान श्री कृष्ण में, वो सभी पथ तो मृत्यु संसार में वापस जाते हैं। अश्रद्धान पुरुषा धर्म से परंतप अप्राप्य मांग निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तन्ते। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं भगवद गीता में कि लोग जो मुझ में पूरी श्रद्धा नहीं रखते, तो ऐसे लोग तो भक्ति पथ से भ्रष्ट होते हैं और वापस मृत्यु संसार में आता है। तो इस्कॉन की विशेषता है पूरी श्रद्धा रखना भगवद गीता यथारूप में। कुछ लोग तो भगवद गीता को अपने मत से अनुसार प्रचार करते हैं, और भगवान कृष्ण जो कहते हैं तो वो सब श्लोक गीता से लेके अपना मत का प्रचार करते हैं। और दूसरे लोग है जो गीता को नहीं मानते और अलग अलग ढंग से अपना मत स्थापन करना चाहते हैं। तो इस्कॉन की विशेषता है कि हम सब महान महान पूर्वाचार्यों की रीति के अनुसार हम स्वीकार करते हैं कि भगवान है श्री कृष्ण। और भगवान जो कहते हैं भगवद गीता में, वो वैदिक ज्ञान का सारांश और सर्वोत्कृष्ट प्रदान है। श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में कृष्ण भक्ति प्रचार की हरि नाम के द्वारा, कृष्ण प्रसाद वितरण के द्वारा, और भागवत गीता और श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों का प्रचार के द्वारा। ये तीनों का जरूरत है, हरि नाम का जरूरत है, क्योंकि हरि नाम है वो सिद्ध युक्ति। भक्ति योग पूर्ण होते हैं हरि कृष्ण कीर्तन करने द्वारा। श्रील प्रभुपाद एक उपमा दिए थे कि वो हरि कृष्ण कीर्तन करना क्या है, वो जैसे एक आदमी को फोन करना। तो यदि आप नरेंद्र मोदी को फोन करना चाहते हैं, नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात है कि आप नरेंद्र मोदी का नंबर नहीं जानते, और दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी के सेक्रेटरी के अगर वो नंबर मिलेंगे तो सेक्रेटरी तो फोन उठाएगा और आपको समय नहीं देगा। तो सेक्रेटरी का काम है वो सबको ना कहना, और मुझे नरेंद्र मोदी से बात कर ना, वो सेक्रेटरी का ड्यूटी है। तो हमें मालूम है वो भगवान कृष्ण का फोन नंबर क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान का सेक्रेटरी है श्रील प्रभुपाद, तो उनका काम है लोगों को कृष्ण भगवान को अर्पण करना। तो हरि नाम के द्वारा वो साक्षात संबंध स्थापित होते भगवान कृष्ण के साथ। तो हरि नाम करने चाहिए, और हरि नाम कीर्तन से क्या होते है, चैतो दर्पणम मार्जनम, हृदय में वो सब कलुष काम क्रोध लोभ इत्यादि, जिससे हम भगवान से अलग रहते हैं, वो सब साफ हो जाते हैं। वो सब काम क्रोध लोभ मोह माद मात्सार्य, वो हरि कीर्तन करने से चैतो दर्पणम मार्जनम, चित्त शुद्धि होती है। और श्रील प्रभुपाद हरि नाम के द्वारा और प्रसाद वितरण के द्वारा भी पाश्चात्य देशों में प्रचार किए थे। तो कृष्ण प्रसाद से क्या होते हैं, चित्त शुद्धि, शरीर अविद्या जाल, ये शरीर क्या है, वो अविद्या का जाल जैसे है जिसमें हम फंस गए हैं। और जड़ इंद्रियों के द्वारा हम ऐसे फंस गए, शरीर में से हम इंद्रिय सुख भोग करना चाहते हैं और उससे हम माया का दृढ़ बंधन से भौतिक मायिक जाल में फंस गए। तो इस प्रकार हम संसार में रहते हैं। तो शरीर की पुष्टि के लिए कुछ भोजन लेना है नहीं, और साधारण भोजन लेने से क्या होते हैं, वो भोजन जो कृष्ण का प्रसाद नहीं है उससे क्या होते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि विषयर अन्न खाइले मलिन होय मन, लोग जिनके मन में काम क्रोध लोभ इत्यादि है, तो ऐसे लोग के अन्न या किसी प्रकार का खाना लेने से हमारे मन में वो काम क्रोध लोभ जो वो देने वाला आदमी का मन में वो हमारे मन में आता। इसलिए कृष्ण भक्ति मार्ग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कि वैष्णवों तो विषय अन्न, अभक्त अभक्त जन का प्रदत्त भोजन नहीं लेते, खाली कृष्ण प्रसाद। तो कृष्ण प्रसाद लेने से काम क्रोध लोभ इत्यादि की वृद्धि नहीं होते, काम क्रोध लोभ से हम शुद्ध होते और कृष्ण प्रेम मन में आते हैं। तो इसलिए कृष्ण प्रसाद का वितरण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है कृष्ण भक्ति जीवन में और कृष्ण भक्ति प्रचार करने में। और श्रील प्रभुपाद कृष्ण भक्ति प्रचार किए थे भगवद गीता का उपदेश के अनुसार। भगवद गीता से हम क्या समझ सकते, तो पहली शिक्षा है कि शरीर और शरीरी भिन्न है, अर्थात हम सब आत्मा है। ये शरीर जिसमें हम है वो अस्थाई है, उसका जन्म था उसका मृत्यु होगा, लेकिन जन्म के पहले मैं था और मृत्यु के बाद मैं रहूंगा। तो कम समय में हम एक शरीर में रहते हैं और उसके बाद हम दूसरा शरीर मिलते हैं। तो जब तक हम मानव शरीर प्राप्त किए हैं तब तक अवसर होते हैं यही सभी शिक्षाएं समझना। कुत्ते बिल्ली ये सब आत्मा है, लेकिन ऐसा शरीर जब तक ऐसे शरीर में है तब तक भगवद गीता का प्रचार विचार विमर्श करना संभव नहीं है। तो मानव शरीर बहुत ही मूल्यवान है और मानव शरीर प्राप्त करके वो पशु जैसे जीवन बीतना नहीं चाहिए। पशु जीवन में क्या होते आहार निद्रा भाई मैथुन, ये चारों मनुष्य जीवन में भी होते हैं, परंतु मनुष्य जीवन में अवसर है ऐसे ही पूछना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों मैं विशाल दुख मिलता हूँ, मैं चाहता हूँ सुखी होना लेकिन दुख मिलता हूँ। तो ये सब उपदेश भगवद गीता में मिलते हैं, ये सब प्राथमिक उपदेश और सबसे उच्च उपदेश है भगवद गीता में कि कृष्णा ही पुरुषोत्तम भगवान। जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण को संबोधन किया, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभूम। अर्जुन भगवान कृष्ण को बताए कि आप परम ब्रह्म है। तो शास्त्र में बताया गया अहम ब्रह्मास्मि, अहम परम ब्रह्मास्मि नहीं, अहम ब्रह्मास्मि उसका मतलब मैं आत्मा हूं, ब्रह्मा हूं, परंतु केवल कृष्ण परम ब्रह्म है। शास्त्र में आत्मा शब्द है परमात्मा शब्द है, ब्रह्म शब्द है परम ब्रह्म शब्द है, तो दोनों एक ही नहीं है। यदि सब आत्मा भगवान थे, जैसे कुछ लोग विभ्रमित विचार करते, तो परमात्मा शब्द की आवश्यकता नहीं था। तो परमात्मा शब्द है गीता में, परम ब्रह्म शब्द है गीता में, और कि श्री कृष्ण वो परम ब्रह्म है वो स्पष्ट है भगवद गीता से। यदि हम भगवद गीता यथारूप ग्रहण करते, क्या होते हैं, एक प्रचलित संप्रदाय है वैदिक सभ्यता में, वो मायावादी बोलते जो अच्छा लगता है भगवद गीता, क्योंकि भगवद गीता में वो सब आध्यात्मिक शिक्षा जो सब उपनिषदों में सब एक छोटे सा ग्रंथ में संकलित है और एकदम स्पष्ट रूप में संकलित है। उपनिषद का वाक्य कभी कभी वो बहुत कठिन है, उसका अर्थ समझना कठिन है, परंतु भगवद गीता का वचन बहुत स्पष्ट है और उसमें उपदेश है कि शरीर अस्थाई है असत है और आत्मा सत है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। और भौतिक संसार दुखमय है, दुखालयम शाश्वतम, और भगवद गीता में भी कर्म मार्ग का तिरस्कार करना है। चैतंग भुक्त्वा स्वर्ग लोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गता गता काम कामा लभन्ते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल मूर्ख लोग प्रयास करते स्वर्ग जाना। क्यों मूर्ख है? वहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वर्ग में विशाल सुख इंद्रिय सुख प्राप्त होते हैं, फिर भी श्री कृष्ण कहते हैं कि विशाल सुख अनुभव करके लोग जो वहां जाते वापस आते हैं यही पृथ्वी पर। और इस प्रकार वैदिक कर्म मार्ग पालन करने से कर्मी लोग तो ऊपर जाते वापस आते ऊपर जाते वापस आते भौतिक संसार। तो इस प्रकार कर्म मार्ग का तिरस्कार करना है। और भगवद गीता में अतुल विश्लेषण है प्रकृति के तीन गुणों के बारे में, और कैसे तीन गुणों से सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से सब जीव भौतिक संसार में बद्ध है। बद्ध जीव चुभि गुण माया भावाय ए भी सर्वे जंग जगत मामेभ्य नाभिजानाति मामेभ्य परम व्ययम्। कृष्ण भगवान कहते कि ये तीन गुणों से सब जीव विभ्रमित रहते भौतिक संसार में। तो इसलिए मायावादी जो मोक्षाकांक्षी है भगवद गीता को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गीता में कुछ वचन है जो मायावादी तो ज्यादा अच्छा नहीं लगते। यदि उसका यथारूप समझना है कि मतपरतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई नहीं है। उसका मतलब क्या है कि कृष्ण भगवान है। अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान। हे कृष्ण आप परम सत्य है परम धाम है परम पवित्र है। तो ये सब वचनों से भगवान कृष्ण स्पष्ट स्थापित करते हैं कि वे ही परम सत्य वे ही परमात्मा वे और सभी जीवों से ऊपर है। ममायवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब जीव कृष्ण के सनातन अंश है, परंतु मायावादियों का गलत मत है कि सब जीव तो भगवान के समान है। और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ममायवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सब जीव कृष्ण के सनातन अंश है। इसका मतलब जीव तो कभी भी भगवान जैसे पूर्ण नहीं हो सकते, लेकिन मायावादियों स्थापित करना चाहते हैं कि जीव और भगवान अभिन्न है। आत्मा सब आत्मा भगवान है, जो संभव नहीं है। परंतु वे जो असंभव है स्थापना करना चाहते कि ध्यान से विवेक लगाने से अपनी बुद्धि लगाने से समझना कि मैं भगवान हूँ और ऐसे मुक्त होते हैं। और ऐसे वो मायावादी कभी कभी वो सूर्योदय के पहले ध्यान करते हैं और ध्यान से ध्यान में सूर्य को आदेश देते हैं, सूर्य उठो, फिर सूर्योदय होते और ऐसे ही सोचते हाँ मैं भगवान हूँ, सूर्य को आदेश दिया उठना और उठ गए हैं, ऐसा है कुछ मायावादी जो ऐसे ही सोचते। तो ऐसा है कोई मुनि तथाकथित मुनि जो सूर्य देव को आदेश दे सकते हैं, तो सूर्य पश्चिम प्रांत से उठो, संभव होगा क्या? हाँ संभव होगा नहीं, तो उनकी कल्पना में वो भगवान बन गए, लेकिन खाली कल्पना में। तो भगवद गीता में बहुत कुछ जो मायावादियों अच्छा लगता है और बहुत कुछ जो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए यथा रूप ग्रहण नहीं करते। अर्जुन भगवान कृष्ण को कहते परम ब्रह्म बोलते, वो अर्जुन तो अति स्तुति करते और अर्जुन स्वीकार करते कि कृष्ण और अर्जुन एक ही है, इसलिए परम ब्रह्म बोलते। इसका मतलब अर्जुन बोलते हे कृष्ण आप परम ब्रह्म, इसका मतलब कि मैं परम ब्रह्म हूँ। वो कैसे है? यदि किसी व्यक्ति बोलते कि नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, उसका मतलब है क्या कि जो ऐसा बोलते है देश का प्रधानमंत्री है? नहीं, कौन ऐसा समझ लेंगे? सबसे बड़ा मूर्ख भी ऐसे ही समझने लगता है। अगर एक व्यक्ति बोलते है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उसका मतलब स्पष्ट है, उसका मतलब नहीं है कि वो वक्ता प्रधानमंत्री है। तो अगर कोई ओ मैं भूख लग रहा हूँ मुझे कुछ खाना दो, और दूसरा आदमी तो एक थाली खाना उसके सामने रखते और खुद लेते, बोलते हो कि तुम बहुत भूखी हो तो इसलिए मैं खाता हूँ क्योंकि तुम और मैं एक ही, ऐसे चलेगा? तो साधारण व्यवहार में नहीं चलेगा, और परम ब्रह्मा का अनुसंधान आध्यात्मिक में नहीं चलेगा। भगवान का मतलब जो सबके ऊपर है, तो कोई जीव सबके ऊपर है नहीं। किसी व्यक्ति है संसार में, केवल आज नहीं है तो भूतकाल में भी भविष्य काल में है कोई व्यक्ति जो भगवान है, कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। तो लोग जो ध्यान करने से विवेक लगाने से अपने को भगवान बनाना चाहते हैं, तो सबसे बड़े मूर्ख है, तो ऐसे कहना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद ऐसे बहुत दफे कहते थे, क्योंकि कहने का जरूरत है, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े स्वामी जनता के बीच में आके बोलते हैं कि हम सब नारायण हैं, और ऐसे कॉस्ट देते 20,000 रुपया का कॉस्ट, मतलब उसका किराया है, वो देना है 20,000 रुपया जिससे वो एक स्वामी से सीखने है, तो कैसे नर से नारायण बनते और 20,000 रुपया देना है, दरिद्र नारायण को देना है, वो नारायण जो शिक्षा देते है बहुत दरिद्र है इसलिए उसको पैसे देने, अगर ये सब बकवास ही है। लोग जो शिक्षा देते है क्यों पैसा ले? अगर वो नारायण बन गया है तो नारायण जो लक्ष्मीपति है, और लोग से पैसा क्यों लेते? और कौन देते 20,000 रुपया? तो बड़े अमीर लोग हैं नहीं तो कोई साधारण आदमी 20,000 रुपया नहीं दे सकते। तो ऐसा बड़ा बड़े व्यापारी ऐसा देते हैं, तो व्यापार में बहुत चालू है ये सब लोग, लेकिन आध्यात्मिक विचार में एक नंबर मूर्ख है। और ऐसे ये सब लोग तो जनता के बीच में आके चीटिंग बाजी करते हैं, और लोग तो मैं नर था अभी नारायण का बन गए हूँ, ऐसे ये सब मूर्ख है, ये सब विरुद्ध थे श्रील प्रभुपाद। ऐसे ही मत सोचिए कि श्रील प्रभुपाद तो केवल हरे कृष्णा हंसते थे, नहीं, श्रील प्रभुपाद एक वीर थे। और ये सब गलत फहमी का प्रचार से विरुद्ध थे, क्योंकि ये सब गलत फहमी का प्रचार से पूरा दुनिया के लोग वास्तविक आध्यात्मिक साक्षात्कार से भ्रष्ट है, विशेषकर भारत में, क्योंकि भारत में भगवद गीता है, भारत में भगवान की भक्ति है, और ये सब लोग जो भगवद गीता लेके और भगवद गीता का वास्तविक उपदेश को विपरीत करके प्रचार करते हैं, वे सब मानव समाज के एक नंबर शत्रु है, क्योंकि मानव जीवन में एक ही अवसर है। 84 लाख जीव जाति में वो मानव श्रेय प्राप्त करना बहुत बहुत ही दुर्लभ है, और केवल मानव जीवन में अवसर है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से मुक्त होना, और वो कैसे संभव है, तो खाली यही समझना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूँ और कृष्ण की सेवा करना, जिसका दूसरा नाम है भक्ति, भक्त्यामाम अभिजानाति, भगवान कृष्ण तो पूरी तरह मालूम सकते भक्ति से। तो जो अलग ढंग से प्रचार करते कि कृष्ण भगवान नहीं है, ये हम सब भगवान है, ये या वो भगवान तो एक फकीर है, साईं बाबा है, ये सब जो प्रचार करते हैं मानव समाज के एक नंबर शत्रु है। मानव जीवन में वो अवसर जो है तो पूरा नष्ट करते हैं। तो इसलिए जो भगवद गीता यथारूप ग्रहण करना चाहता, जो श्रील प्रभुपाद के वास्तविक अनुगामी होना चाहता है, तो श्रील प्रभुपाद का आदर्श के अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार करेंगे, प्रसाद वितरण करेंगे, भगवद गीता यथारूप का वितरण करेंगे, और वो वाणी भी कहेंगे। श्रील प्रभुपाद जैसे बोले वैसे उनके अनुगामी भक्तजन कहना चाहिए, नहीं तो वो परंपरा में से वो सब वाणी जो हम मिलती है, वो वाणी प्रचार अगर नहीं हो तो क्या होगा, तो परंपरा लुप्त हो जाएगा। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इमं विवस्वते योगं भोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनोरीक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त इमं राजाशयो विदुः सकालेने हमाता योगो नष्ट परंतप। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बहुत पहले ये उपदेश जो मैं तुम अर्जुन को अभी कहता हूँ, बहुत पहले मैं विवस्वान सूर्यदेव को बताया, और विवस्वान मनु को बताया, और मनु इक्ष्वाकु को बताया, और इस प्रकार राजार्षि Rajarshi Parampara may say, ye Gita Gyan ka Adan Pradan Huata. Parantu Mahan Kalme, wo Gyan Lupt ho gaya. Aur isliye Bhagwan Krishna kehte Arjun ko ki me aaj wo Gyan jo bahut pahle bal diya tha. Vivasvan ko, to abhi tum ko kehta hun. So, parampara, adhyatmik parampara, kaise lupt ho jate. So, yadi ek shishya, to sadguru se sad upadesh milte, parantu dusron ko nahi kehte. Alag dang se kehte, ya alag vichar kehte, ya vastavik upadesh, nahi bolke, alag se bolte, us prakar parampara nasht ho jate. Aur aise, aajkal jo Hindu dharm ka naam mein chalte, wo kya hai? Wo sab Bhagwan Krishna ki vani leke usko ulta siddha karke usme alag alag apna mat dalke prachar karna. Usme kuch hai jo shastra ke anusar, jaise aaj tak to sabhi Hindu vishwas karte hai ki punar janma hote hai. To wo vishwas chalte. Lekin vastav mein wo to vishwas ka vishay nahi hai. Pura fact hai, sahi hai. Bhagavad Gita mein Shri Krishna stapan karte to kaise punar janma hote. To kuch na kuch chalte Hindu dharma aur Krishna ki bhakti bhi hote hai, lekin aur bahut kuch hai jiska koi ulekh nahi hai Vedic shastra mein. Jaise wo Sai Baba ki puja, wo kya hai? Kisi shastra mein nahi hai, lekin chalte. Aur koi usse virodh nahi hai, hum ke alawa. To Krishna bhakti prachar karna chahiye, wo param satya, jo Vedic vani hai, wo param satya ka prachar karna, aur sat sat jo satya ka naam mein asat hai, wo sab khandan karna chahiye. Nahi to kya hoga? Log sunenge humse ki wo Krishna Bhagawan hai. Ye dusra ashram jaake sunenge ki sab Bhagawan hai. Aur dusra ashram, teesra ashram jaake sunenge ki Sai Baba Bhagawan. Ye soch soch ke kya 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 wo sab alag alag bolte. Phir ek aur aadmi se sunenge ki jato mat toto pat. Wo sabhi mat chalte, theek hai, to sabhi ek hi hai. To uska matlab kya hai? Ki Shri Krishna param satya hai, wo kali ek mat hai. Uska matlab ki Krishna param satya nahi hai. Krishna param satya hai, uska matlab ki sab ke upar hai. To agar upar ho, to upar hi hai, aur hum sab niche hai. Lekin agar shabd isme nahi lana chahiye. Sachmuch Krishna sabke upar hai. Lekin yadi hum kehte hai ki wo ek mat hai. Ek mat hai ki Krishna sabke upar hai. To agar hum aise swikar karte hai, uska matlab ki Krishna sabke upar nahi hai, to kuch log aise sochte hai, lekin vastav mein to nahi hai. Sab mat ek hi hai, sab mat sahi hai, iska matlab ki koi vastavik satya nahi hai. Phir wo Bhagavad Gita kehne ka koi jarurat nahi tha. Kali time pass ke liye Bhagwan Krishna Arjun ko kuch adhyatmik baat bataye. Lekin uska koi vastavik arth nahi hai. To Krishna aise kuch shlok bataye jisse aaj kal aur bachche school mein Gita competition karte hai aur prize milte hai. Wo Bhagavad Gita ka matlab. To aise Bhagavad Gita jo मानव समाज में सबसे मूल्यवान है उसको शस्त्र बनाता है। और इसलिए हमें जोर से कहना पड़ेगा कि सब जो भगवद गीता यथारूप ग्रहण नहीं करते वो सब मानव समाज के सबसे बड़े शत्रु है। तो गुजरात में ही वो महात्मा गांधी भी तो हर रोज गीता पाठ किया है, लेकिन बोलते कि वो कृष्ण जैसे व्यक्ति मानव समाज में आया मुझे विश्वास नहीं। तो ये क्या है, वो भगवद गीता में स्थापित है कि कृष्ण परम सत्य है, वो महात्मा गांधी बोलते कि कृष्ण जैसे कोई आदमी कभी भी नहीं था, वो महात्मा गांधी था। इसका मतलब क्या है कि कृष्ण काल्पनिक है और महात्मा गांधी सही है। वो बोलते है कि वो गीता में क्या है, पंच पांडव है, वो पंच इंद्रिय है और कुरुक्षेत्र का शरीर है और ऐसे ही सब कुछ रूपक जैसे बनना चाहते है। और इस प्रकार वो सब अलग अलग लोग तो अलग अलग मत के अनुसार गीता की व्याख्या करते हैं और गीता का वास्तविक अर्थ को पूरा छिपा के। तो श्रील प्रभुपाद का एक विशेष प्रदान है कि उन्होंने भगवद गीता यथारूप किया है, जिसमें मुख्य उद्देश्य है स्थापित करने की श्री कृष्ण परमेश्वर परम पुरुष है और सब जीव कृष्ण के दास है। तो भगवद गीता का प्रचार यथारूप होना चाहिए, नहीं तो भगवद गीता जो भगवद गीता यथारूप ग्रहण नहीं करते उसका भगवद गीता का कहना का कोई अधिकार नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद का गीता प्रचार करने के पहले ऐसे सोच प्रचलित था कि भगवद गीता है एक ग्रंथ जो किसी भी उसको लेके तो उसमें से अपना विचार स्थापन कर सकते, लेकिन वो गलत फहमी का खंडन किया है श्रील प्रभुपाद कि गीता ऐसे नहीं है कि सब लोग तो गीता लेके तो ओ पंच इंद्रिय, पंच पांडव का मतलब पंच इंद्रिय, कुरुक्षेत्र का मतलब शरीर और कृष्ण कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। किसी का अधिकार नहीं है, हम सब जीव है, हम सब तुच्छ है, हम सब अज्ञानी है, हम सब माया से पीड़ित है, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, हमारा कुछ भी अधिकार नहीं है। जैसे हम कृष्ण के ऊपर है, हम कृष्ण से अच्छा सब कुछ जानते हैं और हम कृष्ण जो कहते हैं उसको निकाल के अपना मत भगवद गीता में सही बोलना, हमारा कुछ भी अधिकार नहीं है। तो वो गलत फहमी कि जो कोई भी हमारा मन नहीं आते है हम भगवद गीता में सही प्रचार कर सकते हैं। वो भगवद गीता का अर्थ है, वो भगवद गीता एक ग्रंथ है जिसमें से अलग अलग आध्यात्मिक मत स्थापित होते हैं। तो वो गलत फहमी का पूरा खंडन किया श्रील प्रभुपाद। तो भगवद गीता यथारूप ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो भगवद गीता को स्पर्श करना नहीं। अगर कोई बकवास बोलना चाहते है तो ठीक ठीक नहीं है, लेकिन कहो, लेकिन भगवद गीता का नाम से नहीं। और इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जो हमको दिन रात उपदेश दिए थे तो कैसे कृष्ण भक्ति पालन करना चाहिए और कैसे कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए, तो हमें श्रील प्रभुपाद यथारूप भी ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि श्रील प्रभुपाद हमको बहुत उपदेश दिया है और अभी Srila Prabhupada to mar gaya hai, aur hum abhi bare hai, aur hum Srila Prabhupada jo bataya usko ulta siddha karke hum apne dang se prachar karenge. Shishya ka matlab jo guru ka vacha shira radya karke grahan karte hai. Nahi to parampara nasht hote. Sat shishya kaun hai jo puri shraddha se nishkapat roop se guru ka vachan grahan karte hai aur yatha shakti prayas karte hai palan karne aur prachar karne. To is prakar hame yatha roop Bhagavad Gita ka upadesh grahan karne chahiye, prachar karne chahiye. Aur hum jo bahut bhagya se Srila Prabhupada ke charan ashray mein aaya hai, hamara ek matra kartavya hai Srila Prabhupada ke sab upadesh yatharup grahan karna. Hare Krishna.